سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صلوات بھیجیے محمد علی محمد بار آپ سے درخواست گزاریں حسینیہ سید اکبر رضوی کے تحت یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ گزشتہ 2 سال سے منعقد ہو رہی ہیں، محرم کی مجالس بھی، پھر سفر کی مجالس، پھر ایام فاطمیہ کی مجالس بھی۔ یہ حسینیہ منصوب ہے بہت بڑے عزادار اور فرش عزا کے خدمت گزار جناب سید اکبر رضوی آل اللہ مقام ہو، جو خود بھی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے کے مانے جاتے تھے، بہت بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اکبر رضوی صاحب کا۔ ان کی سعادت مند اولاد نے ان مجالس کا سلسلہ حسینیہ اکبر رضوی کے تحت شروع کیا ہے، پروردگار ان کی اولاد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سے گزارش کریں گے مرحوم سید اکبر رضوی صاحب علی اللہ مقامہ اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ ایدان محترم، جہاں ہم نے کل بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ہم لے آئے تھے آئے تطہیر تک اور چادر تطہیر تک، اور یہاں بات کو ختم کیا تھا، بس 2 منٹ لیں گے تاکہ تسلسل قائم ہو جائے۔ یہاں بات کو ختم کیا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں انما کلمہ حصر ہے، ایسے اہل بیت کے درمیان میں وجود، معصوم کونین کا وجود جو ہے وہ حصر کی علامت ہے، یعنی اگر آپ کے ذریعے سے تعارف نہ کرایا جائے تو غیر کے داخلے کا امکان موجود رہے گا۔ لیکن یہ حدیث قصہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے، کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ جو جملہ ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس میں بہت بڑا کمال یہی چھپا ہوا ہے کہ اگر جناب معصوم کونین سے ہٹ کر کسی سے بھی تعارف کرایا جاتا تو غیر کے داخلے کا امکان موجود تھا۔ اس پہ آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں اور ہم بھی اس پہ کافی مجالس پڑھ چکے، بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اب ایک اور معیار کیا ہونا چاہیے، کل ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اہل بیت میں لوگوں کے بہت ساروں کے دعوے ہیں کہ سب شامل ہیں، یہ بھی شامل، وہ بھی شامل، وہ بھی شامل۔ نہیں، ہم بالکل ایک عقلی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، کل بھی عرض کیا تھا، اس میں کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں جو ہمارا نقطۂ نظر ہے، میں ہمارے علماء کا، میں پورے مکتب کا نقطۂ نظر ہے، اس پر دلیلیں قائم ہیں نا، وہ دلیل قائم کریں گے۔ اب کوئی ماننا چاہتا ہے تو مان لے، نہیں ماننا چاہتا تو زبردستی تو ہم اسے منواتے نہیں۔ چلیے اگر یہاں بھی حدیث قصہ پر بھی یہ اعتراض اٹھا دیا جائے کہ یہ ہماری حدیث قصہ ہے، بھائی یہ تو، حالانکہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مستند اور معتبر صحابی اللہ کے رسول کے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، اور انہی سے بہت ساری روایات احادیث دوستوں نے بھی نقل کیے، لیکن بہرحال کوئی اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ حدیث قصہ تو آپ کیا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، تو چلیے ہم اس سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا مصداق ہے کون۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا، اس کا مصداق کون ہے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے روایت، اور تیسری چیز ہوتی ہے درایت، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم درایت پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آیت کے آیات کے ذریعے سے ہم نے سمجھانا چاہا، کوشش کی، جس کی سمجھ میں آ گیا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا نہ مانیے، لڑنے کی بات کوئی نہیں ہے، جھگڑنے کی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، اہل ذکر کا بھی حوالہ دیا، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی مثال بھی دے کر سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر چادر تطہیر میں جو ہستیاں آئیں ان میں یہ 5 ہی ہستیاں ہیں حضور سمیت، چھٹا کوئی آیا نہیں، اگرچہ کہ اس گھر میں ایک سے ایک، یعنی ایک بڑی شخصیات جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستیاں موجود تھیں، حتیٰ کہ خود معصوم کونین کی صاحبزادیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ہم نے ان کو تو شامل نہیں کیا، کیونکہ ہم نے بنائی ہی نہیں حدیث قصہ، تو ہم شامل کہاں سے کریں گے؟ دیکھیے اگر کوئی بناتا تو کوشش کرتا کہ علی کی سب اولاد کو لے آؤ نا، یعنی علی سے علی جناب مولا کائنات کی اولاد تو زیادہ ہے، چلیے اور دیگر ازواج سے بھی ہے، لیکن کوشش کرتا کہ معصوم کونین کی تو 4 بچوں کو لیا ہے نا چادر میں، ہے نا؟ اگر کوئی انسان گڑھتا تو کیا کرتا، انسان بناتا تو کیا کرتا، حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ दोनों शहजादियों को भी लेकर आता, लेकिन नहीं, ये बंद बांधना ही बता रहा है कि बेशक आलिम गैर मुअल्लिमा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का मकाम, इल्मी मकाम जिसको कहते हैं ना। देखिए अब मासूम के हम थोड़ी सी तशरीह कर दें, जब मैं मासूमा कहूँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तो परेशान मत हो जाइए, मुशवश ना हो जाइए। देखिए एक है 14 मासूमिन के हिसार, तो 14 मासूमिन में कोई 15वां है नहीं है, लेकिन मासूम कुम क्या है, नाम तो आपका फातिमा है लेकिन अपनी हस्ती शख्सियत की वजह से वो क्या कहलाई, जनाबे मासूमा। तो इस मानी में हम कुछ हस्तियों को ये दर्जा देते हैं, ये हमारी अकीदत का भी तकाजा है और ये उनके मकाम का भी तकाजा है, ये उनके किरदार का भी तकाजा है। ये मैंने इसकी वजाहत इसलिए कर दी कि अगर कहीं ये सुन ले तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जैसे जनाब मासूम कुम सलामुल्लाह अलैह है ना ऐसा, जैसे जनाब अब्बास अलैह सलाम, तो हमने पहले ही कह दिया कि 14 मासूमिन में शामिल नहीं है, 55 में शामिल नहीं, 12 इमामों में शामिल नहीं, तो ये एक अलग है मकाम है। जैसे इमाम, हर नबी इमाम है, वजअलनाहुम अइमतन यहदूना बिअमरिना है ना, 83वीं 73वीं आए थे सूरह अंबिया की कि हमने इन्हें इमाम बनाया। यहां इमाम से मुराद क्या है, पहले अंबिया का जिक्र आया ना कि अंबिया को सबको हमने पेशवा बनाया, तो अंबिया की इमामत ये बतौर कुल्ली इमामत है ना, ये वो उमूमी इमामत है जो हर नबी को दे दी गई, हर नबी को पेशवा बना के भेज दिया गया। लेकिन जब हम इमामत खासा की बात करते हैं तो वो कहाँ है, वो 12 इमामों की इमामत खासा है जो जनाब इब्राहिम की नस्ल में इनाम के तौर पर उन्हें दी गई थी। सलावात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब बात समझ में आ गई, तो अब हम जब बात करें तो आप, लेकिन हमने बताया कि ये चादरे किसा चादरे तथीर में कितने लोग हैं, इसके साई यमानी में कितने लोग, 5 लोग। तो अगर कोई हम में से किसी ने, मतलब हमारे आप बाप दादा में किसी ने गड़ी होती तो भाई सीधी सी बात है कि तो दोनों हस्तियों को भी लेकर आता कि नहीं लेकर आता। बस यही कमालात हैं हदीसे किसा के कि जगह जगह बंद बांधे गए हैं कि हाँ सबका मकाम अपनी जगह, जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैह का मकाम अपनी जगह, इन दोनों शहजादियों का मकाम अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन जो 5 का मकाम है वो किसी छठे का नहीं है। जो इन 5 का मकाम है चादर तथहीर के अंदर है ना, जो पंजतन पाक जबान पे आ गया लोगों की ना हमेशा हमेशा के लिए। अब आइए अब कायम करेंगे दिरायत। ये तो रिवायत है ना कि वहां भी हैं, मैंने अर्ज किया कल अब्दा यमानी का मैंने नाम लिया और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने जिक्र किया 5 का, लेकिन बस वो गुज़िश्ता 40 साल में वो जो एक दौर चला प्रोपेगेंडे का बाजार फिर गर्म हुआ, जैसे बनी उमैया के जमाने में हुआ था, वो जमाना वापस पलटा और इतना प्रोपेगेंडा कि सामने की चीजों को भी मशकूक बना दिया गया, सामने की चीजों को भी जो जायब बातें मुसल्लम थी उनको भी क्या किया, शुकूक व शुबहात का शिकार बना दिया गया। ठीक है अब आइए, चलिए अगर कोई नहीं मानता, पहले तो मैंने अर्ज कर दिया कि रिवायात वहां भी मौजूद हैं पंजतन के हिसार की, लेकिन चलिए दिरायत कायम करते हैं। ठीक है दिरायत कायम करते हैं, और इस पर हमने अलग अंदाज में पहले बात की है, इस पर हम हर जगह बात करते हैं। मैंने अर्ज किया कि जब भी मैं मुबाहले का जिक्र करता हूं कुछ ना कुछ नए पहलू सामने आते हैं। मैं नाचीज सा तालिब इल्म हूं, लेकिन जब पढ़ता हूँ ज्यादा गौर फिक्र करता हूँ, जितना उसको देखता हूँ तो एक से एक गोशा निकलता चला आता है, और जितना मैं मोबाइल को पढ़ता चला जाता हूँ उतने ज्यादा उसके पहलू मेरे सामने आते चले जाते हैं। एक सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब आपकी खिदमत पे अर्ज करें, ये मुबाहला क्या है? अच्छा फिर तमाम मुफस्सरीन का इत्तेफाक भी है, किसी ने चाहे एक लाइन में लिखा लेकिन लिखना तो पड़ा ना, क्या लिखेगा मोबाइले के जवाब में, आए मोबाइले के जवाब में क्या लिखेगा, तो बिल आखिर सबको लिखना पड़ा कि भाई ये 5 हस्तियां मोबाइले में गई थी, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन। एक सलावत और इनायत फरमा दीजिए। ये 5 हस्तियां गई थी तो तय है ना, ओ जितना भी मुतासिब मुफसिरों लिखना तो पड़ा उसे, मुबाहला वाकया पूरा नहीं लिखा किसी ने लेकिन ये तो लिखना पड़ा कि मुबाहला हुआ था और ये हस्तियां गई थी। किससे हुआ था भाई, बनी नजरान से हुआ था, और नाम भी लिख दिया लोगों ने उनके सरदार का, भी वो नाम है नहीं मुझे से गलत नहीं, लेकिन क्योंकि तफसीरों में लिखा है आकिब नाम, ठीक है ना, कुछ नहीं कुछ और भी नाम लिखा होगा, खैर उससे बहस नहीं, मगर फिलहाल हम आकिब नाम ही लेंगे उसका। तो आकिब जो वहां से आए थे 40 बनी नजरान के, और 40 के 40 उलमा थे, जाहिल कोई नहीं था, फिर इन उलमा में जो इनके नजदीक आलम था वो था आकिब, यानी इनका सबसे बड़ा सरदार या जिसको सबसे बड़ा आलिम जानते थे, किताबों का आलिम, आसमानी किताबों का इल्म रखने वाला, مکمل ایک عالم تھا، اس کو معلوم تھی، علامات بھی جانتا تھا، نبی کی علامتیں کیا ہے، پیغمبر کی علامت ابھی بتا دیتے نا آپ کو، پیغمبر کی علامت کیا ہے، رسول کی علامت کیا ہے، نہ ہو تو کیا نشانی ہوگی، ہے تو کیا نشانی، یہ سب جانتا تھا. یہ آئے تھے نا دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، مدینے میں آئے تھے. کہاں ہوا تھا یہ ان کا مباحثہ؟ مسجد نبوی میں ہوا تھا نا. مختصر کر دیتے ہیں، چلیے وہ سب آپ لوگ بار بار سنتے ہیں. مباحثہ ہوا 40 دن، 39 دن، جتنے دن بھی ہوتا رہا بھائی، اتنے دن ہوا کہ وہی آ گئی کہ بس اب گفتگو کا دروازہ بند. وہی آئی نا، اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے تھوڑی گفتگو کا دروازہ بند کیا، آپ تو گفتگو کر رہے تھے روز، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. تو اب بتائیے کہ 39 دن 40 دن رسول نے کون سی دلیل ہے جو قائم نہیں کی ہوگی، کی ہے نا، لیکن وہ نہیں مان رہے. لہذا آگے فمن حاج، اب وہی آ گئی، فمن حاج جگہ فی من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ بس اب گفتگو کا دروازہ بند. اب بھی آپ سے حجت کر رہے ہیں، اب بھی لڑ رہے ہیں، جب سارا علم دے دیا گیا، سب ان کو بتا دیا گیا، علم رکھنے کے باوجود بحث کر رہے ہیں، اب گفتگو نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت کا میدان. جمع ہو جاؤ تم سب اپنے لوگوں کو لے کے، ہم اپنے لوگوں کو لے کے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت قرار دیں گے اللہ کی. اور جھوٹوں پہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اسی وقت خاتمہ، جس پر لعنت پڑی لعنت کرتے ہیں، ہلاک، ہلاکت کا میدان ہے بھائی، جس پر اگر مباہلہ ہو جائے تو جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک. ایسے ہی ہے نا، ابھی مباہلے کا دن تو وہ ڈرے ہوئے تھے بنی نجران کے لوگ کہ بھائی تو اتنے سارے آ جائیں گے، تو پورا مکہ اس زمانے میں 25 سے 35 ہزار کی آبادی بتائی جاتی ہے، تو آج کی سمجھ لیجیے کہ اس زمانے کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر مدینہ، اتنی آبادی، ایوریج نکالیے گا تو لاکھوں میں پہنچ جائے گا، 60-70 لاکھ کی آبادی بن جائے گی، اتنا بڑا شہر مدینہ. تو ان کا بھائی یہ تو سب آ جائیں گے، ہم تو 30-40 ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ عاقب نے معیار بتایا. اب دیکھیے، اب کوئی نہیں مانتا تو میں دیکھیے، تکرار ضرور ہوئی ہے واقعی کی، لیکن جو پہلو میں درایت کا کہہ رہا ہوں، وہ درایت کا پہلو اب آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہ وہ درایت ہے کیا. اس نے کیا کہا؟ اچھا، جس نے بھی مباہلہ لکھا اس نے یہ واقعے کو لکھا، اور نہیں بھی لکھا تو افراد تو لکھے نا کہ کون کون گئے، لکھے نا افراد. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے معیار معلوم ہے، کاش اسی سے سیکھ لیا ہوتا معیار. عجیب ہے، کہتا ہے مجھے معیار معلوم ہے، وہ معیار یہ ہے کہ مباہلے کا میدان ہے ہلاکت کا میدان. اگر یہ آ جائے شہر والوں کے ساتھ تو ڈٹ جانا، میدان میں مباہلہ کریں گے. شہر والوں کے ساتھ آئے تو ڈٹ جانا، ہم مباہلہ کریں گے. لیکن اگر آئے صرف گھر والوں کے ساتھ تو پھر مباہلہ نہیں کرنا. نہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ شہر والے الگ، گھر والے. اب یہ طے ہو گیا کہ جو بھی آئے گا گھر والا وہی ہوگا. اس نے کہہ دیا نا کہ اگر گھر والوں کے ساتھ آئے تو اب جس کے ساتھ بھی اللہ کا رسول آئے گا، یا شہر والوں کے ساتھ آئے گا یا گھر والوں کے ساتھ. اب جب گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تو کس کے ساتھ آیا؟ ایک صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. اب اگر شہر والوں کے ساتھ نہ آیا، گھر والوں کے ساتھ آیا، تو طے ہو گیا نا کہ جو آ رہے ہیں وہی گھر والے ہیں. وہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر شہر والوں کے ساتھ آئے گا تو ہم مباہلہ کریں گے، اگر گھر والوں کے ساتھ آئے گا تو مباہلہ تو طے ہو گیا نا، کہ اب یا شہر والوں کے ساتھ آئیں گے یا گھر والوں کے ساتھ. اب یاد رکھیں کہ یہ اسی موقع کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے زوف کا اظہار بھی کیا، رات گھر میں بھی گزاری اپنی بچی کے، اور اعلان بھی کیا چادر میں جب یہ پانچ جمع ہوئے تو اعلان بھی کیا، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. کیونکہ ویسے تو بہت سارے تھے نا شامل، گھر میں تو بہت سارے افراد ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا، وہ پھر پوری تفصیل کی بات ہے کہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، نشاندہی کر دی. لہذا جب صبح مباہلے کے لیے نکلے تو ان پانچ افراد کے ساتھ، یہ کل یعنی پانچ، چار اور ایک حضور، پانچ افراد، باقی شہر کو منع کر دیا کہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا. اب جب اس شان سے نکلے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ گھر کے لوگ، تو وہ اہل بیت کہا تھا نا، कि अब जब ये आ रहे हैं तो पूरे आलम इस्लाम ने देखा भाई मदीना पूरा आलम इस्लाम ही है ना उस वक्त का, या आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है, आलम इस्लाम की सरदारी के फराइज अंजाम दे रहा है, सरदार इस्लाम यानी हमेशा के लिए वो तो रहमतुल आलमीन है, सारी इंसानियत का सरदार है, वो मौजूद है कि नहीं है। तो अब वो सब देख रहे हैं ना कि जिनके साथ निकले हैं वही अहले बैत हैं। सलावत दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस घर का होना और बात है, अहले बैत होना और बात है। लिहाजा यही गलत फहमी थी लोगों को कि जो भी घर में रह रहा है वो अहले बैत का मिसदाक है, इसलिए मुबाहले का मैदान सजाया गया ताकि मालूम हो जाए कि अहले बैत हैं कौन, अहले बैत कहते किसे हैं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब इस मैदान का भाई ये भी तो गजवा है ना, सिर्फ तलवार से गजवे तो नहीं होते हैं, ये मैदान है मैदान। जैसे कि जुल अशीरा एक मैदान है, शब हिजरत एक मैदान है, बद्र एक मैदान है, अलग अलग मारके की नौयत अलग है, मारके तो है ना, गजवात तो हैं, मैदान तो है, मैदान बद्र, मैदान ओहद, मैदान खंदक, मैदान खैबर है कि नहीं है। फिर उसके बाद चलिए बाद में आ जाएगा मैदान गदीर है कि, और इसको क्या कहा जाता है, मैदाने मैदान मुबाहला, इसको क्या कहा जाएगा, मैदाने। बस हर मैदान का एक ना एक सरबरा है कि नहीं, सालार है कि नहीं, भाई हुजूर की जात को अलग रखिए, परचमदार तो कोई है, अलमदार तो कोई है, बस याद रखिएगा मैदान मुबाहला वो गजवा है, वो मारिका है जिसकी परचम बरदार हुजूर की बेटी फातिमतुज जहरा है, ये है परचम बरदार इस गजवे की, फातेह इस गजवे की अलम बरदार कौन है, फातिमा जहरा हमसरे अली दुख्तरे रसूल, ये है फातिमा जहरा का मकाम। अभी और आगे बढ़ाते हैं, आपको बात मालूम होगी कि अगर वो आयत समझ में नहीं आ रही, रिवायत समझ में नहीं आ रही, तो भाई दिरायत तो देख लो, दिरायत पर अल्लाह का रसूल किसे लेकर जा रहा है, किस किस को लेकर जा रहा है, तो जो जा रहे हैं वही तो अहले बैत हैं, और कोई भाई सब मोहतरम है, मैं किसी के एहतराम में कमी नहीं कर रहा, सब मोहतरम है, लेकिन इस मनसब पर नहीं कि उनको मुबाहले में लेकर जाया जाता। अगर इस मनसब पर कोई होता तो अल्लाह का रसूल उसे भी साथ लेकर जाता। पूछिए अपने मुफस्सिरीन से कि कहां से वो ये लाए वाकया। अब ये ना कह देना कि ये भी शियों ने घुसेड़ दिया था अंदर, कहीं मुबाहले में शक ना करने लगे। अब तो मुश्किल ये हो गई है कि हर चीज को उल्टा करके रख देते हैं, कोई भी वाकया हो उसको पलट कर रख देते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। लेकिन आजकल जरा मुश्किल में फंसे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्योंकि जहां बुनियाद थी जो पाया था वही हिलने लगा है। जब हम कहते थे कि साम्राज्य ने बनाया था कोई अकीदा तो कोई नहीं मानता था, आज सारे गालियां दे रहे हैं, अब फायदा नहीं, वक्त गुजर गया, अब बहुत सारे लोगों के दिलों में वो राशिक हो चुका, अब तुम निकालना भी चाहो तो नहीं निकाल सकोगे, समझ गए, हुई थी ना तुमने गड़बड़ की है 100 साल में, इतनी गड़बड़ की है कि मुसीबत हो गई, तुम्हारी अपनी मुसीबत हो गई, अब संभाले नहीं संभल रहा। जिन अंग्रेजों ने बनाया था जब तक जरूरत थी का इस पे चलते रहो, अब जरूरत खत्म हुई का खबरदार वापस बैक टू दी पवेलियन, तो वापस अपने जाहिलाना कामों की तरफ पलट गए कि नहीं पलटे। मालूम हुआ कि 1400 साल के इस्लाम ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, जैसे जाहिल कल थे हक के मुकाबले में खड़े थे, वैसी जाहिल आज भी हक के मुकाबले में खड़े हैं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए चलिए, अभी दिरायत पूरी नहीं हुई, अभी एक स्टेप हम पढ़ रहे हैं, आप दूसरी दिरायत ले लीजिए। जब उसने आते हुए देखा तो क्या कहा, जैसे ही देखा तो वो जुमला जाहिर है, आप जानते हैं मजालिस सुनते रहते हैं कि मुबाहले से हाथ उठाओ, जजिया दो, जान बचाओ, चलो यहां से जजिया देके चलो। क्यों, उनका भाई क्यों, क्या हुआ, कब वो चेहरे देख रहा हूं जो पहाड़ों को इशारा करेंगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, ये जुमला है ना उसका था, कि वो चेहरे देख रहा हूं कि जो पहाड़ों को इशारा करेंगे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। अच्छा अब देखिए, इसने कुरान की तिलावत तो नहीं की, वो आयत नहीं पढ़ी इसने, कुरान मजीद में एक आयत है ना सूरह हश्र में, लव अनजल नहाजल कुरान अला जबलिन लरायतो खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल कर दें तो पहाड़ इसके खौफ से, अल्लाह के खौफ से लर्जा होकर रेजा रेजा हो जाते। यानी कुरान का वजन बताया कि कुरान का वजन क्या है, कि अगर ये पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता, रेजा रेजा हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? अब जब हम कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इत्रति अहले बैती, तो हमारे पास दलील है कुरान से, और उसकी जगह कुछ और लगाया जाए तो उसके लिए कोई दलील नहीं है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? दो वजनी चीजें, गरा बहा चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। वजन, वजन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? कुरान का वजन बताया कुरान ने, खुद बताया, लअंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरैतु काशिम मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह। अब दूसरी वजनी चीज कहां से लाओगे? नहीं मालूम। क्या कह रहा है वो आखिर? कह रहा है कि वो चेहरे देख रहा हूं जो इशारा करेंगे तो पहाड़ अपनी जगह, पहाड़ों को इशारा करेंगे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। उसने वो आयत नहीं पढ़ी, लेकिन इतना इल्म रखता है कि इनका वजन क्या है, यानी पहाड़ों से मुराद क्या है। जिस शय को इशारा करेंगे वो शय अपनी जगह छोड़ देगी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुरान और अहले बैत दो चीजें, दो वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि कुरान का वजन उठाएंगे अहले बैत और अहले बैत का वजन उठाएगा कुरान। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसके अलावा और कोई तफसीर पेश नहीं कर सकता कि वजन की तफसीर क्या है, सकलैन की तफसीर क्या है, सकलैन का माना क्या। यही माना है जो हमारे उलमा बताते हैं और हमारे यहां नकल किया जाता है, यही माना है वजन का। अब आइए, कहता है कि वो वजनी वो चीजें देख रहा। अच्छा बताइए, ये चेहरे पहले नहीं देखे थे क्या? रोज तो देख रहा था। किससे बातचीत कर रहा था? किससे बहस हो रही थी? किससे गुफ्तगू? अल्लाह के रसूल से तो हो रही थी, आमने सामने हो रही थी, तो देखा कि नहीं देखा? सारे सहाबा किराम तशरीफ लाते थे रिजवानुल्लाह अलैहिम, वो सब आते थे कि नहीं आते थे? सारे तशरीफ लाते थे, सबको नहीं देखा था। अच्छा मौला कायनात के आने पर कोई पाबंदी थी क्या? वो भी आते थे। हसन रहमत सलाम पर कोई पाबंदी थी? वो भी आते थे। वो तो घुटनियों चलते भी आ जाते थे इमाम हुसैन, तो दोनों को मिंबर से उतर के अल्लाह के रसूल जानों पर बिठा लेते थे और फिर खुतबा शुरू कर देते थे। सारी रिवायत में मिलता है, सबको देख, किसको देख रहा है? और जो पांचवीं हस्ती आज शामिल है उसको तो आज भी नहीं देखा, ना पहले देखा, वो तो महजूबा है, हिजाब में है, जाहिरी हिजाब भी है और फिर रिसालत इमामत और विलायत का हिजाब भी है ना। रिसालत इमामत विलायत सबने अपने हिजाब हिसार में लिया हुआ है ना, बजाहिर रिसालत इमामत विलायत ने अपने हिसार में लिया है, लेकिन बातिन में क्या है? बातिन में याद रखिएगा, फिर वही बात आ गई, फातिमा वो कलमा हसर अहले बैत के दरमियान जिसने अपने हिसार में लिया है, यानी रिसालत इमामत और विलायत के गिर्द हिसार का नाम है फातिमा। फातिमा ताकि गैर दाखिल ना हो सके, इस फातिमा के जरिए से तारुफ है। लिहाजा कहां देखा? लेकिन नहीं, मसला क्या था? वही मसला जो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ था। कब था? जब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखें खीरा हो गई थी और पूछा था अल्लाह की बारगाह में, या रब्बी वमन तहतल किसा, ए मेरे रब ये चादर में कौन है? क्यों जनाब जिब्राइल को नहीं मालूम के कौन है? ये घर कोई नया है जनाब जिब्राइल के लिए? सुबह शाम आना जाना है, मख्तलफुल मलाइका है या नहीं है? तो मशीयत कहती है, कह जिब्राइल आपको नहीं मालूम कि कौन है? ये पूछना क्या माने रखता है? बेमानी सवाल। लेकिन नहीं, मशीयत ने नहीं टोका। क्यों? मशीयत के इल्म में भी है कि आज जिब्राइल जो कह रहे हैं वही हकीकत है, जिब्राइल को नहीं मालूम। वरना मासूम तो मुबालिगे में भी सजा में कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता कि जो मालूम और कह दे कि नहीं मालूम, हो नहीं सकता ना। अभी मलक जनाब जिब्राइल जैसा मलक, रूहुल अमीन जैसा मलक, तो पूछा या रब्बी वमन तहतल किसा, चादर में है कौन? घर वो ये, सब वो ये, सहन वही है, ये चादर में है कौन? मशीयत जानती है मजबूरी को। क्यों? अलग अलग देखा था, पहचानते थे, नूरे मोहम्मद, नूरे अली, नूरे फातिमा, नूरे हसन, नूरे हुसैन, पहचान। जब ये पांचों नूर चादर जहरा में जमा हुए, नूर अपने कमाल को पहुंच गया, नूर कामिल हो गया। जब नूर कामिल हो गया, एक नूर बन गया, जब एक नूर बन गया तो आके खीरा हो गए जिब्राइल ने पहचाने के घर वही है, आंगन भी वही है, शख्सियतें भी वही रहती हैं यहां, फिर ये नूर कैसा है जिसे मैं नहीं पहचान पा रहा? इसलिए इरशाद हुआ हूं फातिमत वाबूहा व बालोहा व बनूहा, अगर जिब्राइल सवाल न करें तो ये जवाब ही नहीं आ सकता था। सलावत इनायत फरमा दीजिए। अब समझ में आया कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल क्यों किया? इसलिए सवाल किया था ताकि जवाब आ जाए। अब वही बात वहां ले जाइए कि देखा था, पहचानता था, वे नूर मोहम्मद है, ये नूर अली है, ये नूर हसन है, नूर हुसैन है, अलग अलग देखा था। आज जब नूर फातिमा दरमियान में आया तो इल्म रखता था किताबों का, आसमानी किताबों का आलिम था, फौरन पहचान गया कि नूर अपने कमाल पर पहुंच के आ रहा है। समझ गया था कि नूर वो नूर है कि जिस शय को इशारा करेगा वो शय इनकी ताबे हो जाएगी, वो शय इनके इशारे पर अमल करेगी। लिहाजा फौरन हाथ उठा लिया, यानी ऐलान कर दिया कि मैं नहीं पहचान सका, ये वो नूर अपने कमाल पर आ रहा है, लिहाजा इनके साथ मुबाहला ना करना वरना कौम नसारा हलाक हो जाएगी, कौम नसारा खत्म हो जाएगी। तो अब आइए कमाल पे, आखिरी मंजिल। हम जैसे लोग, वैसे तो आखिरी मंजिल अल्लाह जानता है, लेकिन इस मजलिस में आपको कमाल तक पहुंचाएं कि वो है क्या। बस कौन है फातिमा, कौन सी दलील होगी जो अल्लाह के रसूल ने ना दी होगी मस्जिद नबी में गुफ्तगू के वक्त। अल्लाह का रसूल है, आलम फिल आलमीन, आलमीन में उससे बड़ा कोई आलिम है, आलम फिल आलमीन, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं पूरे आलमीन में। तो उससे बहस की है और उसने कौन सी दलील है जो नहीं दी होगी, दी होगी ना, आखिर अल्लाह के अल्लाह का हुक्म आ गया कि नहीं आपकी कोई दलील नहीं मानते, बस अब बहस खत्म। अब समझ में आ रहा है मकाम फातिमा क्या है। अब गुफ्तगू नहीं होगी मेरे हबीब, अब मैं आपको वो दलील दूंगा, वो बुरहान दूंगा, वो हुज्जत दूंगा कि जहां सारी दलीलें खत्म हो तो अल्लाह के रसूल के लिए परवरदिगार जो हुज्जत भेजता है उस हुज्जत बालिगा का नाम है फातिमा। हुज्जत बालिगा है फातिमा, जहां सारी दलीलें खत्म हो जाएं वहां जो दलील अल्लाह के रसूल को मिलती है अल्लाह की बारगाह से, उस दलील का नाम है फातिमा। अब फिर तकरार कर रहा हूं उस रिवायत के, समझ में आया क्यों मासूमीन फरमाते थे कि नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम या नहनु हुज्जतुल्लाह अलन्नास, हम इंसानों पर अल्लाह की हुज्जत, व फातिमा तो हुज्जत अलैना, और हमारी जद्द ताहिरा फातिमा हम पर हुज्जत है। सलावात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है वो मकाम फातिमा कि जिसका एहतराम रसूल का, तो मैंने बता दिया कि रसूल कैसे एहतराम करते थे फातिमा तो उम्मो अबीहा, और कैसा एहतराम था कि जब साहबजादी तशरीफ लाती थी, सही मुस्लिम की हदीस है ये जो पढ़ रहा हूं, और भी है सियाह में, दूसरी जगहों पर भी है, सियाह के अलावा भी दीगर मनाबे जो है इसके मौजूद है बहुत सारे, लेकिन मैंने इसलिए नाम ले दिया कि आसान हो जाए ढूंढने में, सही मुस्लिम की, हज्जाज इब्ने मुस्लिम नेशापुरी जिसकी सही मुस्लिम सियाह सित्ता में दूसरा नंबर है ना, सही बुखारी के बाद दूसरा नंबर है, सही बुखारी में वो है फातिमा तो बिज़त मिन्नी मनाजाहा फ़कत अजानी, वो हदीस वहाँ है और ये हदीस यहाँ है इसमें सही मुस्लिम में, कि जिसमें फरमाते हैं कि जब भी वाकया पूरा नकल करते हैं कि उसकी तशरीह में जनाब फातिमा की फजीलत बयान करते हुए कहता है कि जब भी फातिमा रसूल के घर में तशरीफ लाती थी अल्लाह के रसूल अपनी जगह से खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, क़ामा इलैहा व रहबहा, उनके लिए खड़े होते थे और उनका इस्तकबाल करते थे मरहबा कहकर, और सिर्फ खड़े नहीं होते थे अपनी मसनद पे अपने मकाम पे उन्हें बिठा देते थे। मसनद रिसालत की अहमियत बताएं आपको, जनाब उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन, हमारी जान उन पर कुर्बान, जनाब उम्मे हबीबा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जनाब उम्मे हबीबा की बड़ी कुर्बानियां हैं, जनाब उम्मे हबीबा मक्का में इस्लाम लाई थी, और जानते ना किस खानदान से, किसकी बेटी है, किस शख्स की बेटी है, लिहाजा खानदान से निकाल दी गई थी और आके रसूल ने अपने अक्द में ले लिया था। अब ये देखिए कैसी मोमिना खातून है, जब वो जो था सुलह हुदैबिया, उसको माहिदे को अहद शिकनी की मक्के वालों ने, और भाई ये खतरा हुआ कि मुसलमान हमला करेंगे कि हमने माहिदा तोड़ दिया, अहद शिकनी की है, तो उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था ना अबू सुफियान साहब ने, वो तशरीफ लाए मदीने आए, और मदीने आके एक जगह से सिफारिश ढूंढ रहे हैं, दूसरी सिफारिश ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई सिफारिश मिल जाए इस माहिदे की तजदीद हो जाए, नहीं हो पा रही थी, तो जानते थे कि घर में मेरी बेटी है जनाब उम्मे हबीबा, फिर मैं कह रहा हूं जनाब उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं कहता मैं उन्हें क्या कहता हूं सलामुल्लाह अलैहा। देखिए मकाम, देखिए सबने लिखा, मौरखी ने लिखा उनके लिए कि जनाब उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा कि घर तशरीफ लाए के मेरी बेटी है वहां तो जाऊं, जब गए तो उसने कहा ठहरो, बिठाया नहीं बल्कि ठहरो, मसनद को हटा दिया, तो वह हैरान हुआ ये क्या किया तुमने, वो छोटा सा कालीन के लिए जा नमाज टाइप का मुसल्ला के जो भी कह लिए टुकड़ा वो हटा दिया, कहा कि इस पे रसूल बैठते हैं अल्लाह के, ये मसनद रसूल है और तुम काफिर हो, मैं इस पे मसनद रिसालत तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं देती हूं। ये बेटी कह रही کیونکہ جانتی ہے کہ ماں باپ الگ، اللہ کے رسول کا مقام الگ ہے. نظر ناراض ہو کر چلے گئے تھے کہ میری بیٹی ہو کر تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اللہ کے بندو دیکھ تو لیا کرو، کریکٹرز کو الگ الگ تو کیا کرو. ہم کسی خاندانوں کے ایسے بطور کلی دشمن تھوڑی ہیں، اگر ان خاندانوں میں بھی کوئی ایسا نکلا ہے مومن یا مومنہ تو ہم نے اس کو الگ کر کے رکھا ہے. ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، درود و سلام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دے دے گا. ہم نے تو یزید کے بیٹے کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، یزید کے بیٹے کو. کیوں؟ اپنے باپ کا مخالف تھا، اس تخت پہ نہیں بیٹھا جس تخت پہ خون حسین لگا ہوا تھا، نہیں بیٹھا. تو ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم تو کرداروں کو الگ الگ کرتے رہے، الگ الگ کرتے رہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہے مسند، یہ مسند رسول کی اہمیت. اب اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مرحبا کہتا ہے، استقبال کرتا ہے، اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، مسند رسالت پر بٹھاتا. کیوں؟ بزعتم منی، میرا جز ہے، جزو رسالت ہے. اور تفصیل اس کی ہم کبھی بیان کر چکے ہیں، وہ بیان نہیں کریں گے، بس اتنا کافی، کیونکہ جزو رسالت، جزو رسول، صرف اسی کو بیٹھنے کا حق ہے، بیٹی کی حیثیت سے نہیں. بیٹی کی حیثیت سے بٹھاتے تو سنت رسول بن جاتی نا، سب اپنی بیٹیوں کو بٹھاتے، لیکن قیامت تک یہ فعل سنت رسول نہیں بنا. کیوں؟ یہ صرف فاطمہ کے لیے مخصوص تھا، یہ فعل، یہ سنت بن نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ منصب تھا فاطمہ کا کہ وہی مسند رسالت پر بیٹھ سکتی ہے، اور کوئی مسند رسالت پر بیٹھنے کا حقدار نہ تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس زحمتوں کو آپ کی تمام کرتے ہیں. یہ ہے وہ گھرانہ، یہ وہ گھرانہ جہاں امام المتقین بھی ہے، اور جتنے ائمہ ہیں متقین کے امام ہیں، ان سب کو پروان چڑھانے والی ذات کا نام ہے ارحام مطہرہ میں سب سے مقدس محترم صادقہ طاہرہ مطہرہ، صدیقہ طاہرہ مطہرہ ہستی، فاطمۃ الزہرا کی ذات. اللہ نے کیا منصب دیا اور کیوں دیا؟ بس اب منزل کی طرف آتے ہیں. کیا منصب دیا؟ پیغمبر ختم مرتبت کی صاحبزادی، مولا کائنات کی ہمسر، گیارہ اماموں کی ماں، گیارہ اماموں کی ماں. اور جس مہدی دوراں کا 72 فرقے انتظار کرنے، میں نے 73 نہیں کہا، ایک 73ویں ناسبی کو میں نے الگ کر دیا. 73 فرقے ہوں گے نا مسلمانوں کے، یہی حدیث ہے نا کہ 72 تو بنی اسرائیل میں تھے اور تمہارے 73 ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا تھا 73 فرقے ہو جائیں گے. یہ الگ ہے کہ 73 فرقے ہیں اور فرقے فرقیاں بہت ہیں، یعنی ہر فرقے میں پھر اور فرقے فرقیاں، وہ الگ ہیں. لیکن مسلم جو بڑے فرقے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 73. ان میں سے ایک کو ہم نے نکال دیا، تو 72 فرقوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مہدی کے ظہور پہ ہے نا، مہدی کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، کچھ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پیدا ہو گیا، ہمارے پاس دلیلیں، تاریخی دلیلیں اس کی. کچھ کہتے ہیں امام حسین السلام کی اولاد سے، کچھ کہتے ہیں امام حسن کی، لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق، سب کا اتفاق ایک ہی، چاہے کہیں سے بھی کتاب چھپے مہدویت پہ، کہے گا یہی کہ مہدی اولاد فاطمہ ہوگا، حسین کا ہو یا حسن کا. پھر بھی لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتا مقام فاطمہ، کہ بابا منجی بشر، شوہر منجی بشر، بیٹے منجی بشر، اور پھر آخر میں وہ جو غلبہ دین کا لے کر آئے گا، لے یو زیرو والا دین کلے، تمام ادیان پہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا، جس کے ذریعے سے وہ کس کا بیٹا؟ ابن فاطمہ، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. اور حالات یہ بتا رہے ہیں زمانے کے، میں تاریخ اور سال اور دن تو معین نہیں کر سکتا، یہ تو گناہ ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں، علامات یہ بتا رہے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. مکے کے حالات پکار رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، عربوں کے حالات پکار رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. جو حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بس کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، جو وہیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جب کفار یہ سمجھیں گے کہ ہمارا قبضہ ہو گیا، عین اس وقت فاطمہ کا لال آواز دے گا انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنے مقامات اور منصب کی مالک فاطمہ، کیا اجر رسالت دیا ہے، کیا اجر رسالت دیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کوئی بڑا آدمی، مشہور آدمی دنیا سے گزر جائے تو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے اسے رخصت کرنے کے لیے، ہے نا، چاہے مذہبی ہو چاہے دنیاوی ہو، रहनुमा चला जाए तो देखिए आप लाखों के मजमे, आपने देखे हमने भी देखे, ऐसे ही है ना। लेकिन कितने अफसोस की बात है, क्या हालात थे, कैसा जमाना था कि मासूमा को यह वसीयत करनी पड़ी थी कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाइए, फला 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 फला, बल्कि तकरीबन अहले मदीना ही के लिए कह दिया था कि कोई मेरे जनाजे में शिरकत ना हो। इतनी तकलीफ दी थी फातिमा जहरा को, इतने सदमे पहुंचाए थे मदीने वालों ने फातिमा जहरा को, 75 दिन या 95 दिन ये बीबी, और वो भी जख्मी हालत में, क्योंकि दरवाजे पे आग लगाने का वाकया तो थोड़े दिन बाद ही पेश आ गया था ना, 10-12 दिन का फासला रहा होगा, 10 दिन के अंदर, हफ्ते अशरे के अंदर अंदर हो गया था। उसके बाद जितने दिन भी रहीं आप इस दुनिया में, अजियत के साथ, तकलीफ के साथ, रंज व अलम के साथ, इस तरह से आपने बाकी अय्याम अपने गुजारे आज़ादारान हुसैन। मैंने कल बताया था तजहीज़ व तकफीन के वाक़े को। अब जब जनाजा तैयार हो गया, पहले मैं ज़रा मौलाए कायनात की कैफियत बता दूं आपके मदफन पर, आपके मरकत पर। जब आप सुपुर्द लहद कर चुके थे ना जसद अथरे फातिमतु जहरा को, सुपुर्द लहद कर दिया था, तो उसके बाद रिवायात में नकल है कि आप बेदम होकर कब्र जहरा पे गिर पड़े थे अली, और ये लिखा है कि बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। कभी किसी ने अली को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था, बिलक बिलक कर रो रहे, और जैसे बैन नहीं करते हैं ऐसे बैन कर रहे थे। कह दुख्तरे रसूल, इन मुसीबतों के जमाने में जब सारा जमाना मेरी मुखालिफत पर आमादा था, आप ही तो एक मेरी मुनिस थी, गमखार थी, मेरे दर्द को समझती थी, मेरे दुख दर्द में शरीक थी, आपने भी मुझे छोड़ दिया। अब अली किसके सहारे जिएगा, अब अली किससे अपना दर्द दिल बयान करेगा, और आपके छोटे छोटे बच्चे जब इनकी तरफ देखता हूं तो मेरा गम और बढ़ जाता है। ऐ दुख्तरे रसूल, आप बेहतरीन जगह चली गई, अपने बाबा के पास चली गई, अपने बाबा से अली का सलाम कहिएगा, अपने बाबा को मेरा सलाम कहिएगा, बताइएगा कि आपके जाने के बाद इस दुनिया ने अली के साथ क्या किया। ये अली के दुखड़ा है, ये अली का बैन है कब्र जहरा पर। अब आइए, जब जनाजा तैयार कर लिया था ना, रात का इंतजार किया, तारीकी का इंतजार किया, चंद लोग हैं खानदान के, चंद बस, इन लोगों के साथ आपने ताबूत उठाया। कौन सा ताबूत? ये पहली बार ताबूत सामने आया था, उससे पहले चारपाई या तख्तनुमा चीज पर जनाजे को रख के ले जाया जाता था। मासूमा को यह पसंद ना था कि मेरा जनाजा इस तरह से किसी तख्त या चारपाई पर रख कर ले जाया जाए, तो परेशान रहती थी। फिज़ा से जिक्र किया था तो जनाब फिज़ा ने बताया था कि हमारे इलाके में इस तरह ताबूत बनाया जाता है, बहुत खुश हुई और वैसा ताबूत बनवाया, या अली ऐसे ताबूत में मेरे जनाजे को लेके जाइएगा ताकि कोई मेरे जसद अथर को देख ना सके, जनाजे में भी ना देख सके। उस ताबूत में जनाजे को रखा गया, रुखसत हुए बच्चे, रुखसत का कैफियत में पढ़ चुका, और जब ये जनाजा लेके चले हैं रात की तारीकी में, चंद लोग, चंद कदम चले थे अली, तो पीछे से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। समझ गए ना आप, इस अली ने पलट कर जो देखा तो क्या देखा, छोटी सी ज़ैनब, 5 या 6 साल का सिन, और रोती हुई पीछे पीछे चली आ रही है कि अम्मा मुझे छोड़कर कहां जा रही, अम्मा मैं किसके सहारे दियो। अली ने जनाजे को रखवा दिया, वापस पलटे, सानिये जहरा को गोद में लिया, आगोश में लिया, और घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होकर गोद से उतारा और सीने से लगा के रो रहे हैं, मेरी बच्ची रात की तारीकी सही, कोई देखने वाला ना सही, कोई सुनने वाला ना सही, लेकिन तेरे बाबा को यह गवारा नहीं कि तू इस आलम में भी रोती हुई घर से बाहर आ जाए, तेरे बाबा को यह गवारा नहीं। आप जानते ना कि एक और मौका आपको बता दूं, वो आखिरी जुमले पढ़ने से पहले, जानते हैं ना जब अली को जख्मी हालत में लेकर आया जा रहा था तो जब घर के करीब पहुंचे थे तो आपने चिल्ला कर कहा था, गश्ता आंखें खोलकर, सब वापस जाओ, सिर्फ मेरे बेटे मुझे लेकर जाएंगे। और सबने कहा था कि मौला ये वक्त ऐसा है कि हमें जाना चाहिए, कब, बाद में आ सकते हो, अभी नहीं, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे घर में हैं, जब वो मुझे इस कैफियत में देखेंगी तो मुझे डर है कि कहीं उनके गिरियाजारी की आवाज बुलंद ना हो। तो कोई नामहरम उनके गिरिए की आवाज सुन ले। समझ में आई बात? यही मौका यहाँ कि मेरी बच्ची इस तरह से ना निकल, इस तरह से ना रो। अली को गवारा नहीं कि इस आलम में भी तू रोती हुई घर से बाहर आ जाए। मैं कहता हूं कि मौला ये 11 हिजरी का, ये 11 हिजरी का मदीना है, क्या होगा 61 हिजरी में जब फातिमा की बेटियां सरबरैना हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए बेपालानों के ऊंटों पर सवार कूफे और शाम के बाजारों में दाखिल होंगी और मुनादी निदा देता होगा, आओ लोगो आओ, जिसे अली अबू तूल की बेटियों का तमाशा दे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज जालिमीन वसयालमुल लजीना जलमू अय्यामुन कलबिन यनकलबून। बारिलहा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवसल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बीमार हैं ज़ख्मी हैं बेहक बीमार करबला सबको सेहत कामिला व आजिलता फरमा। जो असीर हैं लापता हैं बेहक असीरान करबला सबको खैर से उनके घरों तक वापस पहुँचा दें। परवरदिगार तमाम मोमिनीन की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मोमिनीन दुनिया में जहाँ कहीं भी बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं उन्हें फतह नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फार से दोचार कर दे। मरहूम सैयद अकबर रिज़वी के बरजात को बुलंद फरमा। बार इलाहा हम इस काबिल नहीं इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उज्जत का जहूर हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सके। ताजील फरमा जहूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे। मरहूम सैयद अकबर रिज़वी इस खानवादे के दीगर मरहूमिन अपने भी मरहूमिन और तमाम शुहदाए मिलत को शामिल करके एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दीजिएगा।